Namaskar and welcome to yet another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Saturday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444. 2342-1050 and 2331-0464. If you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm your hostess, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sparsh Saxena.
धन्यवाद लालिमा. नमस्कार. घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और अब वक्त है आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र का और आप सभी श्रोताओं का हम हृदय से स्वागत करते हैं. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं. जैसे कि आज शनिवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं. ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं. आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं. नंबर्स हैं 2342-1050 और 2331-4444. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें. आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद. नमस्कार.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डांग.
Thank you, Sparsh. Yes, friends, let's begin with the headlines. In the week, BSE Sensex surged 1,653 points. Nifty 50 added 1.7%. US stocks closes unchanged but manages to secure weekly gains of 1%. And oil prices settle lower. Brent futures down 0.5% at $74.49 per barrel.
ये सप्ताह सेंसेक्स 1,653 अंक पड़ा और निफ्टी में 1.7% की तेजी देखने को मिली. अमेरिकी बाजार बिना किसी बदलाव के बंद हुए, साप्ताहिक स्तर पर 1% की बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट. ब्रेंट का वायदा मूल्य 0.5% की कमजोरी के साथ $74.49 प्रति बैरल पर रहा. और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस सप्ताह के शेयर बाजार पर. इस सप्ताह भारतीय बाजारों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला. साथ ही फेड द्वारा प्रत्याशित ब्याज दर में कटौती के बाद घरेलू सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए. हालांकि इस सप्ताह में बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक लगभग सपाट रहे, जबकि लार्ज कैप सूचकांक लगभग 1.5% बढ़ा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,653 अंक यानी 1.99% बढ़कर 84,544 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 434 अंक यानी 1.71% की बढ़त के साथ 25,791 पर बंद हुआ.
एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, वी आर जॉइंड बाय कुश. ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम रायगढ़. जी कुश, सवाल पूछें.
जी नमस्कार मैम.
नमस्कार जी.
मैम, मेरा दो सवाल है. पहला सवाल ये है कि शेयर बाजार में अगर हम जाते हैं तो हमें किन चीज बातों का ध्यान देना चाहिए, अगर एसआईपी करते हैं तो. और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो कल के दिन में जो शेयर इतना चढ़ा, उसके पीछे रीजन क्या है?
ओके कुशी, देखिए शेयर बाजार में एसआईपी जो है वो मूल रूप से सेकेंडरी मार्केट में अभी उसकी चर्चा चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आप एसआईपी जो कहना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड के जरिए है और वो बहुत ही अच्छा है. और देखिए एसआईपी में तो एक बड़ी जो है कहें कि एक घटनाक्रम भी यहां पे महत्वपूर्ण है कि पहले होता था कि 500 रूपये कम से कम होते थे, अब वो 300 रूपये और अब 100 रूपये के भी एसआईपीज आप कर सकते हैं. तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है और खासतौर पर जो लोग शेयर बाजार को नहीं समझ पाते हैं या शेयर बाजार को की भाषा को या शेयर बाजार के चाल को समझना जिनके लिए मुश्किल है उनके लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी का रास्ता एक बेहतर है। हाँ, अगर आप शेयर बाजार में सीधे सीधे जाना चाहते हैं तो जो टॉप कंपनीज हैं, जो जिसे कहते हैं कि चुनिंदा शेयर जो है उनमें लगाएं और छोटे छोटे खरीदारी करें। एक बार में सारे पैसे लगाने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे खरीदारी करें, जब बाजार में गिरावट हो तो आपके लिए बेहतर है। आपका दूसरा सवाल था कि शुक्रवार को शेयर बाजार में क्यों बढ़ोतरी देखने को मिली, तो देखिए बहुत सीधी सी वजह है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जो आधे फीसदी की ब्याज दर घटाई है उसका असर ये हुआ है कि भारी संख्या में विदेशी निवेशक जो है वो यहां पर पैसे लगा रहे हैं। और एक बात और कुछ भाई यहां बताना चाहेंगे कि शेयर बाजार और ब्याज दर में हमेशा जो है वो उल्टे का रिश्ता होता है। अगर ब्याज दरें घटती हैं तो वो शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर है, और शेयर बाजार अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो वो शेयर बाजार के लिए बुरी खबर है।
जी, और शेरपुरी से हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, सवाल पूछिए अपना।
धन्यवाद सर, सभी को मेरा नमस्कार।
जी नमस्कार
सर, मैं एक एज ए स्टूडेंट भी हूँ लेकिन वर्किंग भी कह सकता हूँ मैं, तो अगर मैं बिल्कुल नया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए तो मुझे किस प्रकार के स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं किसी कंपनी विशेष के लिए नहीं पूछूंगा, एक जनरली आप मुझे कुछ अगर ओवरव्यू दे सकते हैं तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
चूंकि संदीप आपने कहा कि आप एक विद्यार्थी भी हैं और आप वर्किंग भी हैं, तो आपकी आवाज और आपके जो प्रोफाइल जो आपने बताया उससे अंदाजा लगा सकता हूं कि आप 30 वर्ष के उम्र या उससे नीचे के हैं। ऐसे में आपके लिए बेहतर है कि जो आप एसआईपी आप लेते हैं जो लार्ज कैप से जुड़े हुए हो या डाइवर्सिफाइड हो, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के शेयरों में जो पैसा लगा रहे हैं फंड उनमें लगाएं, और कुछ पैसा अगर आपके पास थोड़ा अतिरिक्त है तो दो एसआईपी कर लीजिए। एक एसआईपी रखने की कोई जरूरत नहीं होती, आप दो भी रखते हैं तीन भी रखते हैं तो वो काफी अच्छा है। और दूसरा एसआईपी जो है वो आप डेट फंड या फिर जिसको कहते हैं बैलेंस फंड है उसमें लगा सकते हैं। वैसे रविवार के दिन धीरेन्द्र आते हैं म्यूचुअल फंड पे, आपको और विस्तार से जानकारी दे सकते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि रविवार को भी आप जुड़े और धीरेन्द्र से ये म्यूचुअल फंड का सवाल पूछेंगे तो आपको और खास जानकारी वो दे पाएंगे।
शिशिर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं बाजार लगभग 26,000 के आसपास पहुंच चुका है निफ्टी की अगर हम बात करें, और साथ ही देखें सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो निफ्टी ऑटो अगर हम देख रहे हैं तो काफी अच्छा रन अप दे चुका है, बट क्या अब आगे भी उसमें संभावनाएं बाकी हैं?
देखिए यही सबसे बड़ी बात होती है कि जब बाजार चढ़ रहा होता है तो अगला सवाल यह होता है कि और कितना ऊंचा जाएगा और ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होती है और गिरने की भी कोई सीमा नहीं होती है, तो ऊंचाई और गिरावट के बारे में ये जब प्रश्न पूछा है तो सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अभी कई तरह की सकारात्मक खबरें हैं, कई तरह की पॉजिटिव न्यूज है मॉनेटरी और फिस्कल फ्रंट पे, लेकिन जियो पोलिटिकल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर हमें कई तरह के तनाव और कई तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, तो एक मिश्रित सा माहौल है। तो ऐसे में मेरी आपसे यही जो आपके अगर सवाल का मैं बहुत संक्षिप्त में कहूं तो इतना ही कह सकता हूं कि बाजार में अभी तेजी बनी रह सकती है।
All right, we're now joined by Mr. N.R. Prasad. He's a regular caller, listener and caller, and he's calling us all the way from Bangalore. Yes, Mr. Prasad, namaskar and welcome to Market Mantra, and please ask a question.
Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Good evening, Lalima. Good evening, Sparsh.
Good evening, good evening.
Mr. Sinha, there's two questions.
Yeah.
See, generally, I analyze the company before investment. I just want to know what is the correlation between the market cap of that company versus, now, for example, the Sensex is at 84,544. Market cap versus this Sensex numbers. This is the relationship I just want to know. My second question is this geopolitical problem, again, the latest at the Middle East between Israel and the other countries. Would it impact the coming week? Thank you. These are my two questions.
Okay. When you talk about market capitalization versus Sensex, so normally when you see the market capitalization number, it is for the entire market. And when you say Sensex, it is related with the 30 scripts. So top 30 scripts contribute up to 80% in total market capitalization. So that is giving an idea that what is happening in the market. But overall market capitalization, if it is going up, that means the value of your investment has gone up. So if you want to have a straight answer on relationship between market capitalization and Sensex, almost it reflects more than three-fourths of the market. Now, second question is about the geopolitical situation, especially in West Asia. This is slightly disturbing at this moment, and the way the things are moving, it is not looking very, what you can say, we are not reaching any solution. And there may be escalation between the two countries or the two groups, and that is not a good thing for the market as well as for the global economy.
All right, we have now Jitendra. We have Jitendra online calling us from Jaipur. Jitendra ji, sawal puchhe.
Haan, sir, namaskar. Ye pucha tha ek sawal tha, sir. Maine ek mahina pehle pucha tha, lekin utna matlab thoda sa maza nahi aaya. Maza to aapse Kohli ji se aata hai. Ek prashn hai ki sir, jaise hamari age 52 saal hai aur government bank mein mera khata tha, humne home loan liya tha aur home loan bhi samapt ho gaya aur hamara score kaafi acha hai. तो उन्होंने ओडी लिमिट के लिए हमको बोला जितना ओडी लिमिट लेंगे उतना ब्याज लगेगा और ओडी लिमिट लेना चाहते तो आपको 10-15 लाख का मिल जाएगा. तो मेरे माइंड में आया कि सर 3-4 आईपीओ निकलता है हर एक कम से कम और उतना हमारा पैसा नहीं रहता कि हम तीनों चारों में लगा सके या ऐसे कर सके. तो मेरा था कि उसको ओडी लेके और क्या नाम है जरूरत पड़ता तो लगा तो क्या लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए.
सबसे पहले चीज तो आप बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपने कर्ज पूरा चुका दिया है और कर्ज लेकर के शेयर बाजार में पैसा लगाने का प्लीज ऐसा काम मत करिए. क्योंकि आप अगर आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं ओवरड्राफ्ट के जरिए पैसा लेकर के और भगवान ना करे अगर वो आईपीओ लिस्टिंग के समय उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिया. कोई जरूरी नहीं होता है कि हर आईपीओ आगे ही बढ़ेगा, कुछ आईपीओ बिगड़ भी सकते हैं और एक दो कंपनी में हमने ये स्थिति देखी है. तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आईपीओ के लिए अगर लगाना हो तो जो आपके पास सरप्लस है, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि आपका पूरा का पूरा लोन रिपे हो चुका है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आमदनी है और मुझे लगता है आपकी उम्र 52 वर्ष जैसा आपने खुद कहा, वैसे उम्र और वेतन की चर्चा नहीं की जानी चाहिए,
सही बात,
लेकिन चूंकि उन्होंने कहा 52 वर्ष तो इसलिए मैं उन्हीं की बात को
इन्वेस्टमेंट के लिए पता होना चाहिए कि आप किस उम्र के हैं.
रेंज पे अगर कोई आदमी कहे कि मेरी उम्र इतनी है तो मुझे उसको कहने में कोई हिचक नहीं है, हम पूछते नहीं आमतौर से. तो आपकी उम्र है 52 वर्ष की और आपने पूरा कर्ज चुका दिया है, तो जो भी आपके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचता है वो आप पैसा लगाएं, कर्ज लेकर के आईपीओ में ना जाएं.
जी, और अब रुख करते हैं हम कोलकाता की ओर. कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं अतानु शाह. अतानु जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, सवाल पूछिए अपना.
हाँ, नमस्कार सर, मैं आज हिंदी में बोल रहा हूँ.
जी
सर, सर्किल इकोनॉमी, वित्तीय इकोनॉमी और रैखिक इकोनॉमी, लाइनर इकोनॉमी क्या है और जीडीपी हम प्रोडक्ट देशीय वित्तीय प्रोडक्ट और जीएसटी ग्रॉस सेल्स टैक्स कर संपूर्ण कर सेल टैक्स संपूर्ण विक्रय कर क्या है और सर हिंदी भाषा और अपना जो मातृभाषा उसमें उसी से अपना अर्थनीति का पत्रिका पढ़े तो कितना सुविधा होगा सबके लिए जो अपना जो भाषा में जो इस्तेमाल करते हैं अर्थात उसका जो मातृभाषा होगा और कोई भी अपना L1 लैंग्वेज होगा. सर धन्यवाद.
पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिंदी में प्रश्न पूछा है और जाहिर सी बात है कि आपकी थोड़ी सीमाएं थी हिंदी में, चूंकि आप मूल रूप से बंगला भाषी हैं और कुछ शब्दों को लेकर के आपका था. तो पहला जो सर्कुलर इकोनॉमी है, देखिए आज के समय में सर्कुलर का मतलब क्या है कि जो आपके पास संसाधन है उसका बार बार आप इस्तेमाल कैसे करते हैं. जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपने आजकल सुना होगा स्क्रैपिंग पॉलिसी. स्क्रैपिंग पॉलिसी में क्या होता है कि एक गाड़ी जो कि 15 वर्ष तक आपने चलाया और 15 वर्ष के चलाने के बाद चूंकि उसकी उम्र कम हो गई, उसकी उम्र बिल्कुल ही कम हो गई उसके उपयोग के लिहाज से और वो शायद बहुत ज्यादा आपके लिए जिसे कहा जाए कि एक लीटर पेट्रोल में बहुत कम जो है वो चल पाए, तो ऐसे में उसकी जगह पे आपको नई गाड़ी लेना है. अब सवाल है कि पुरानी गाड़ी का क्या होगा. तो जब आप पुरानी गाड़ी को आप वापस पुरानी गाड़ी को आप बेचते हैं किसी डीलर को या किसी ऐसे जो स्क्रैपिंग एजेंट्स होते हैं उनको बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं उसके जो अलग अलग पुर्जे हैं उसमें जो स्टील है उसका दोबारा इस्तेमाल करने की परिस्थिति बनाते हैं. यानी कि वो स्टील रिसाइकल होकर के दोबारा इस्तेमाल के लायक बना करके उससे नई गाड़ियां बनाई जा सकती है. हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी इसी संदर्भ में देखते हैं जो आपने कहा था. देखिए लीनियर इकोनॉमी है, लीनियर इकोनॉमी में यह क्या है, एक स्टीज में यानी कि एक सामान, एक कच्चा माल, फिर दूसरा कच्चा माल, फिर तीसरा कच्चा माल, वो आपकी लीनियर इकोनॉमी या रेखीय अर्थव्यवस्था जिसको आप रेखीय अर्थव्यवस्था कहेंगे. दूसरा सवाल थोड़ा सा आपका स्पष्ट नहीं था, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं कि सकल घरेलू उत्पाद और जीएसटी बेसिकली ग्रॉस सेल टैक्स के लिए यूज नहीं होता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए यानी कि वस्तु व सेवा कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है वो किसी खास समय में वस्तु और सेवाओं की जो कुल कीमत होती है वो जीडीपी कहलाती है, और जीएसटी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, करीबन 13 तरह के टैक्स और 17 तरह के सेस हैं, इनको मिलाकर के 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई है। तो आप एक उपभोक्ता हैं और कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर आप जीएसटी अदा करते हैं
जी। और अगले कॉलर हमारे साथ गाजियाबाद से गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव जी स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, सवाल पूछिए अपना।
मार्केट प्रतिनिधि नमस्कार सर, मेरा सवाल पावर प्लांट्स के ऊपर है। सोलर पावर प्लांट को सरकार ज्यादा तवज्जो क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि इतने सारे थर्मल पावर प्लांट अगर लगेंगे और बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, और सोलर पावर प्लांट विल यू नो डेफिनेटली कवर द ऑलमोस्ट एंटायर पावर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया अगर ढंग से लगा लें तो, क्योंकि हमारे पास सोलर में तो बहुत अबंडेंट है। हाँ, बारिश और ठंड के मौसम में कोई दिक्कत रहती है, पर उसके लिए उस वक्त पावर की रिक्वायरमेंट कम रहती है। और दूसरा सर, कैपिटल गेन के ऊपर है कि गोल्ड, इक्विटी और प्रॉपर्टी, इन तीनों को बराबर क्यों ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन है लेकिन जो गोल्ड में लगता है कैपिटल उसका कोई बहुत ही फायदा देश को नहीं होता, इक्विटी में लगता है थोड़ा ज्यादा फायदा होता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी में लगता है वो कैपिटल गेन तो बहुत फायदा करते हैं, उससे जॉब जनरेट होती है, नई प्रॉपर्टी बनने से घर बनते हैं और हमारा घर में वैसे ही घरों की कमी, तो कैपिटल गेन शुड नॉट बी डिफरेंशिएटेड बिटवीन दीज थ्री एसेट क्लासेस, व्हाई दे आर टैक्स्ड एट द सेम रेट कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म आई मीन। थैंक यू
गौरव जी। पहला जो आपका प्रश्न था सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा आपको अपने जो आपने प्रश्न पूछा उसमें थोड़ा बदलाव करना होगा। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आज के दिन में बहुत सारे जो थर्मल पावर प्लांट भी हैं, जैसे हमारे देश की जो सबसे बड़ी सरकारी कंपनी जो बिजली उत्पादन की है, उनके कई थर्मल पावर प्लांट में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के लिए जो है वो संयंत्र लगाए गए हैं, और जिसको हम लोग सोलर पैनल कहते हैं। और अगर आपको देखना हो तो आंध्र प्रदेश में रामागुंडम करके एक जगह है, वहां जाकर के एक फ्लोटिंग सोलर पैनल का वो लगाया गया है। इसके अलावा और भी जितने भी ऐसे पावर प्लांट हैं थर्मल के, वहां पर देख रहे हैं, और बाकी रूफटॉप सोलर स्कीम भी शुरू की गई है। तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा गौरव जी आपको अपने प्रश्न में बदलाव करना पड़ेगा। दूसरा जो आपने कहा है कि कैपिटल गेन के मामले में, तो देखिए शेयर बाजार और रियल एस्टेट के कैपिटल गेन के कैलकुलेशन अलग अलग है। शेयर बाजार में आपका बहुत सीधा है कि आपने जो है एक साल और एक साल के ऊपर, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका 10% है। और यदि आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो वहां पर आपका इंडेक्सेशन आ जाता है, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है, इंडेक्सेशन की बात यहां पर नहीं आती है आपके इक्विटी में। इक्विटी में सिर्फ इतना कहा जाता है कि 2017 के बाद अगर आपके पास 1,00,000 रूपये से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। रियल एस्टेट में जो है जो भी आपका गेन होता है उस पर आपको टैक्स देना होगा।
व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सोलर एनर्जी शिशिर, आई थॉट Gujarat is doing very well.
Extremely well.
And
extremely
it's probably well. Topping the, as far as the states are concerned.
You are right.
Also, I think the government is emphasizing a lot on the desert. In the desert areas, they have covered a huge area with solar panels, which makes a lot of sense because they are harnessing solar energy and converting into electrical energy.
And the best part is they are getting the sun rays directly. There is no hindrance into that. So absolutely, that's the most important thing. So if you go to Rajasthan and in various localities, especially after Barmer and beyond Jodhpur, we have seen a long field of solar panels. Mm-hmm. So I think we need to, just think about that, how this is improving. Of course, it is not that it has gone into a big way or it is going to replace the thermal power. Thermal power will be there. But solar power story is going on.
And we are manufacturing solar cells, finally, which we had to import from China.
But at a very small quantity at this moment. It's not that, if you consider with the demand, we need to accelerate further into that direction.
All right, we could go on discussing on solar energy. Well, we are not sure. Yogesh from Delhi, okay, from where we are broadcasting. Ji Yogesh, ji sawal poochhe.
Yeah, sabhi ko namaskar.
जी नमस्ते।
मेरा सवाल है कि जो ये फेड के रेट कट हुए हैं, क्या ये मार्केट को किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, और अगर और रेट कट होते हैं तो क्या इसका मतलब मार्केट का ऊपर जाना तय होता है या ये वोलेटाइल रख सकते हैं मार्केट?
योगेश जी, देखिए अमूमन जो हम लोग कहते हैं ना कि ब्याज दर और शेयर बाजार के बीच उल्टे का रिश्ता है, यानी कि ब्याज दरें घटेंगी तो बाजार बढ़ेगा, ब्याज दरें बढ़ेंगी तो शेयर बाजार घटेगा, ये एक सामान्य सी व्यवस्था है। लेकिन ये भी देखा गया है कि एक मध्यम से लंबी अवधि में फेडरल रिजर्व या ऐसे किसी भी जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके रेट कट का असर जो है वो लंबे समय तक नहीं होता है, क्योंकि फिर उसके बाद कोई दूसरी चीजें जो है वो बाजार को प्रभावित करती है। तो अभी के समय में आप थोड़े समय के लिए देखेंगे बाजार में तेजी है, और अब ये भी निर्भर करेगा कि अक्टूबर के महीने में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि मौद्रिक नीति समिति, हमारी मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक होने वाली है उसमें किस तरह का रुख जो है वो अपनाया जाता है, वो भी बाजार की दशा दिशा को प्रभावित करेगा।
जी, और अमेरिका के बाजारों का हाल जान लेते हैं हम लालिमा जी से।
Yes, Pursh, let's get on with the U.S. markets now. U.S. stocks closed nearly unchanged on Friday as investors paused buying after a strong rally in the prior session that was fueled by an upsized interest rate cut by the Federal Reserve, while Nike's gains helped nudge the Dow to a record. After notching their biggest daily percentage gains since mid-August, major averages were subdued for most of the session but managed to secure weekly gains of at least 1%. The Dow Jones Industrial rose 0.09% and the S&P 500 lost 0.19% and the Nasdaq Composite lost 0.36%. Let's move on to Mumbai now, and we are now joined by another regular listener and a caller, Ratnakar. Ji, Ratnakar ji, sawal poochein.
Hello, good evening.
Good evening.
Madam, mera do sawal hai. Ki aane wale samay mein ऑयल मार्केट के शेयर्स कैसे रहेंगे, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है, जब एक किसी शेयर का प्राइस मोर देन 100% बढ़ गया है तो ऐसे हालत में वो शेयर से बाहर निकलना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एवरेज प्राइस तो कम नहीं होती है, तो वो शेयर से बाहर होना उचित रहेगा क्या? थैंक्स।
पहला जो आपका प्रश्न है, तो शेयर बाजार में तेल कंपनियों की आपकी बात की, इसमें दो श्रेणी आप लीजिए, एक जिसको हम लोग कहते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और दूसरा जो है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो हैं। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज में जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आएगी, और चूंकि उनको जो दाम मिलता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से मिलता है, तो उनके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके लिए फायदा होगा, क्योंकि वो कम कीमत पर तेल खरीदेंगे और उनके मार्जिन पर असर पड़ेगा, तो उनको फायदा हो सकता है। और अभी आपने देखा होगा कि कीमतों में कोई बदलाव अभी फिलहाल नहीं किया गया है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जब 100% से ज्यादा बढ़ जाए, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी बेगर स्टॉक्स कहते हैं, देखिए मेरी हमेशा से राय रही है कि जिस दिन आपको अपने मूल से एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है तो किस्तों में मुनाफा कमाने में कभी मत हिचकिए। ये मत सोचिए कि ये कीमत यहां पहुंच जाएगी तब मुनाफा कमाएंगे, किस्तों में मुनाफा कमाइए, बहुत फायदे में रहेंगे।
जी, और हमारे साथ दिल्ली से भूप सिंह जुड़ चुके हैं। जी सिंह साहब, अपना सवाल पूछिए।
सभी को नमस्कार।
जी नमस्कार।
नमस्कार
सर, मैं ये कह रहा हूँ जो सौर ऊर्जा का पैनल लगाते हैं तो उस पर कितनी मतलब मिल जाएगा लोन सरकार से?
भूप सिंह जी, इसमें सरकार आपको कोई कर्ज नहीं देगी, सरकार आपको इसमें एक तरीके से कुछ सब्सिडी मिलती है अलग अलग जगहों पर, और 300 यूनिट जो कि जो रूफटॉप सोलर इस पैनल स्कीम्स हैं उसमें 300 यूनिट तक का जो है वो फायदा हो सकता है। इसमें आपको सरकार से कर्ज नहीं मिलेगा, हाँ बैंक से अगर आप कर्ज लेना चाहें तो मिल सकता है उसके लिए।
जी, और शिशिर जी, कई बारी ये देखा गया है जब लोगों को गेन्स हो रहे होते हैं तो नॉट इन ट्रेडिंग बट लेकिन नॉर्मली भी जब हमने देखा है तो कई दफा उनको ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने में समस्या आ रही होती है, तो उस समय में क्या करें, चाहे वो टीपिन डालना होता है, उस समय में सीडीएसएल द्वारा शायद कुछ ग्लिचेज आ रहे हो या मे बी ब्रोकर के द्वारा कुछ ग्लिच आया जब आप सेल नहीं कर पा रहे, तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं या उसकी कहीं कंप्लेंट कर सकते हैं, किस तरीके से?
देखिए, अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया और उसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो दो ही बात हो सकती है कि आपका ऑर्डर पहले लेवल पे गया दूसरे लेवल पे नहीं गया जब आप टीपिन डाल रहे हैं, तो आपका जब दिन के सेटलमेंट में आपके पास आया कि आपने ऑर्डर प्लेस किया था लेकिन वो सेटल नहीं हुआ है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, और उसके लिए बकायदा जो है वो ग्रीवांसेस रिट्रेशन सिस्टम स्टॉक एक्सचेंजेस का भी होता है, सीएसटीएल का भी, सीडीएसएल का भी और एनएसटीएल का भी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मुझे एक बार फिर कहना है कि मुनाफा कमाने के मामले में हम लोग बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं। कंजर्वेटिव इस सेंस में होते हैं कि अभी नहीं कमाएंगे और बढ़ जाएगा तब कमाएंगे। ये जो और है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। प्लीज रोटी खाते हैं उसकी सीमा तय करते हैं, तो मुनाफे को भी एक सीमा में रखिए, आप हमेशा फायदे में रहेंगे। दूसरा जो हमेशा हम कहते हैं, किस्तों में मुनाफा कमाइए, फायदे में रहेंगे।
जी, और गाजियाबाद से हमारे साथ संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, सवाल पूछें अपना।
जी नमस्कार सर।
जी नमस्कार
सर, मेरे छोटे छोटे दो सवाल हैं। एक तो ये कि जो यूएस फेड ने जो इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, क्या वो प्रेशर में किए हैं? क्योंकि यूरोप ने रेट कट किए 60 बेसिस पॉइंट, यूएस ने कर दिया, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नहीं किया, जबकि सभी की जो कंडीशन है वो सिमिलर है, कॉन्ट्रैक्शन में है उनका ग्रोथ। जी सर।
ओके, इन्होंने कहा दो प्रश्न है, लेकिन चलिए एक ही प्रश्न है। देखिए, अमेरिका की जो परिस्थितियां हैं वो दुनिया के कई देशों से बहुत ही अलग है, और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, अगर मैं जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के लिहाज से देखूं तो वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो वहां की परिस्थितियां, वहां पे यदि बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ जाते हैं, महंगाई दर में कमी आती है, तो एक मौका बनता है कि आप इसको ब्याज दरों में कटौती करें। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की परिस्थिति और अमेरिका की परिस्थिति में फर्क होता है।
राइट, लेट्स कनेक्ट टू जगमल सिंह कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली।
हाँ जी, जय श्री आराम। सर, सर मेरा ये है कि जो इंडेक्सेशन के बारे में इस बार बजट में बड़ा कंफ्यूजिंग हुआ है, तो मैं ये जानता हूँ जो नैसडेक में, मतलब बाहर इसमें नैसडेक 100 में लगाते हैं, तो 31 मार्च 2023 से पहले के जो है, पिछले बार तो ग्रैंडफादर्ड कर दिया था, उससे पहले इंडेक्सेशन मिलेगा और पिछले बार, और लेकिन इस बार के बाद क्लियर नहीं है अभी क्या है इंडेक्सेशन की पोजीशन उसकी।
जगमाल सिंह, शायद आप ये देख रहे हैं कि जो इस वर्ष के उसमें बजट में घोषणा की गई वो रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ है, रियल इस्टेट में इंडेक्सेशन का, जो इक्विटी मार्केट का इंडेक्सेशन का मामला है वो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, और जहां तक सवाल है कि आप नैस्टैक में या कहीं पे भी और आपने निवेश कर रखा है उसका कैसे निपटारा होगा, तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है और उसमें जो पूंजीगत लाभ होता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
Alright, let's take a look at the oil prices now. Well, oil prices settled lower on Friday, but recorded a second straight week of gains, garnering support from a US interest rate cut and a dip in US supply. Brent futures settled down 0.5% at $74.49 per barrel. US WTI crude futures settled down 0.4% to $71.92. Signs of a slowing economy in major commodity consumer China gave prices a ceiling. For the week, both benchmarks settled up more than 4%. Prices have recovered after Brent fell below $69 for the first time in nearly 3 years on September the 10th. What do you make of the story, Shishir?
Of course, the crude prices will be affected by the Western economy, West Asia development. So there will be some pressure on the oil prices.
जी, और शिशिर जी आपसे जानना चाहेंगे आने वाले सप्ताह का आप क्या हाल देख रहे हैं बाजारों के रूप
में? ये सबसे मुश्किल सवाल होता है कि अगले सप्ताह क्या होगा, लेकिन अभी की जो परिस्थितियां दिख रही हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि शेयर बाजार में थोड़ी तेजी रहेगी।
जी, और कौन से सेक्टर्स आप देख रहे हैं कि इस
समय में अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज को देखूं और आईटी स्टॉक्स देखूं, ये मुझे इन दोनों में बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं।
जी,
और फार्मा?
फार्मा को लेकर के देखिए, फार्मा हमेशा ऑल टाइम हिट है। जब जब बीमारियां बढ़ेंगी दवा कंपनियों की चांदी होती है, ये एक बड़ा आयरनी है, विडंबना है, लेकिन बीमारी बढ़ने के लिए दवा कंपनियों के लिए बांछे खिल जाती है। अब माफ कीजिएगा, मैं किसी दवा कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक स्टॉक के लिहाज से कह रहा हूं कि बीमारी इस समय काफी बढ़ रही है, अच्छी खबर नहीं है, लेकिन दवा तो आपने खरीदनी ही है।
शिशिर जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ एक बार फिर लालिमा अनिजा डांग।
थैंक यू स्पर्श। यस, द हेडलाइंस अगेन। इन अ वीक, बीएससी सेंसेक्स सर्ज्ड 1653 पॉइंट्स, निफ्टी 50 एडेड 1.7%, यूएस स्टॉक्स क्लोज्ड अनचेंज्ड बट मैनेज टू सिक्योर वीकली गेन्स ऑफ 1%, एंड ऑयल प्राइसेस सेटल लोअर, ब्रेंट फ्यूचर्स डाउन 0.5% एट $74.49 पर बैरल। वेल, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। दिस इज माई सेल्फ लालिमा अनेजा डैंग एंड माई कोएंकर स्पर्श सक्सेना साइनिंग ऑफ। नमस्कार,
नमस्कार।